श्लोक नंबर 90। फरीदा तन सुक्का पिंजर थिया, तलियां खूंडें काग, अजय सुरब ना बाहोड़ियो, देख बंदे दे पाग। फरीदा तन सुक्का पिंजर थिया हो गया, पिंजर थिया हड्डियां दा पिंजर हो गया है, हड्डियां दी मुठ हो गया है। फरीदा तन सुक्का पिंजर थिया, हे फरीद वेखता सही, ए तेरा पौंका शरीर विषय विकारां विच पै पै के किड्डा माड़ा पै गया है। वेख ए विषय विकारां दे कारण किन्ना लिस्सा पै गया है, ए लिस्सा पै के जिवें हड्डियां दी मुठी बन गया है। तलियां खूंडें काग, तलियां पैरां दियां तलियां नूं खूंडें ठूंग रहे हन, ठूंगे मार रहे हन। काग कां विषय विकार चस्के रस भोग, इन्हां नूं कां आख्या है। तलियां खूंडें काग, हे फरीद शरीर इन्ना निर्बल ते कमजोर पै गया है कि कां इस दे पैरां नूं ठूंगे मार रहे हन और ए उन्हां नूं हटा भी नहीं सकदा। भाव है विषय विकार ने इस तन नूं सुक्का पिंजर बनाया, पर विषय विकार अजे भी इस नूं ठूंगे मारी जा रहे हन। अते इस पास सत्या नहीं है कि ए विषय विकारां नूं रोक पावे। अजय सो रब ना बहोड़ियो, देख बंदे दे पाग। अजय अजे भी इस हालत विच भी जदों के ए विषय विकारां दे कारण इन्ना लिस्सा ते माड़ा पै गया है। ना बहोड़ियो, बहोड़ी सुन के तरस नहीं कीता। अजय सो रब ना बहोड़ियो, देखो भाई अजे भी जदों के ए ऐडा शरीर करके कमजोर पै गया है अते कां ठूंगे मारनों हटदे नहीं, इस हालत विच भी रब ने इसते तरस नहीं कीता। देख बंदे दे पाग, पाग किस्मत, देख बंदे दे पाग, देखो भाई बिकारी बंदे दी केडी माड़ी तकदीर है। विषय भोग भोग के ए अपनी सत्या गवा बैठा है, फिर भी इस तो विषय विकार छुटदे नहीं। रब ने इस विकारी मनुख ते अजे भी तरस नहीं कीता। इस श्लोक दा भाव फिर स्पष्ट कर देवा। मनुख विषय विकार भोग भोग के शरीर नष्ट कर लैंदा है। विकार ऐसा कर कर जांदे ने बंदे दे अंदर, विकारां दी एडिक्शन हो जांदी है और शरीर बेशक मुर्देवत हो जावे, विकार फिर भी छुटदे नहीं। विकार कामां वांगू ठूंगे मारदे रहिंदे हन, दुख देंदे हन और बंदे दा खेड़ा नहीं छड्दे। तरसयोग हो जांदी है मनुख दी हालत, फिर भी रब ऐसे जीव दे तरस नहीं करदा। ऐसे मंदे पाग हन विकारी दे। फरीदा तन सुक्का पिंजर थिया, तलियां खूंडें काग, अजय सुरब ना बौड़ियो, देख बंदे दे पाग। श्लोक नंबर 91। कागां करंग टंडोलिया, सगला खाया मास, ए दो नैना मच्छ हो, फिर देखन की आस। कागां करंग टंडोलिया, सगला खाया मास। कागां कागां ने, कावां ने, विषय विकार रूपी कावां ने, चस्के रूपी कावां ने, रस भोग रूपी कावां ने करंग पिंजर इथे बहुत दुर्बल ते लिसे पै गए शरीर नूं करंग आख्या है। टंडोलिया चुंझा नाल फरोल मारिया सगल सारा कागां करंग टंडोलिया सगला खाया मास। भाई विकारी बंदे दे पिंजरवत पै गए लिसे शरीर नूं कावां ने चुंझा मार मार पूरी तरह फरोल मारिया है अते सारा ही मास खा लिया है। भाव पैड़े चस्कियां ते रसा भोगां ने विकारी मनुख की सारी ही सत्या खिच ली है। ए दोए नैना मत चो हो फिर देखन की आस। अंत नू विकारी मनुख यों बौड़ी पाउंदा है ए दोए नैना मत चो हो फिर देखन की आस। हे कामो कम से कम मेरिया ए दो अखां नू ना छेड़ियो ए दोए नैना मत चो हो क्यों फिर देखन की आस। ए दोए नैना मत चो हो फिर देखन की आस। ए विकारो तुसी मेरा बाकी तन ता तबाह कर ही दिता है कटो कट मेरिया ए दो अखां नू ना छेड़ियो ए दो अखां नू ना चिमड़ियो क्योंकि फिर देखन की आस। बेशक हां ता मैं विकारी पर फिर भी आस ता रखी है पिर नू तकन दी। ए विकारो मेरिया ए दो अखां साबत ते निरछो रहन दियो क्योंकि विकारी हुंदिया होया भी प्रभु मिलाप दी तमन्ना ता मैं बना रखी है फिर देखन की आस बना रखी है। मैं शायद प्रभु जी मेरे ते तरस खा के दर्शन दे ही देवन क्योंकि ओ कदे भी किसे ते भी तरस खा सकते ने मिलाप बख्श सकते ने। कौडे बाल्मीक सज्जन ए भी तो विकारी ही सन की पता है जिवें इन्हां ते प्रभु जी त्रुठे सन ओ मेरे ते भी त्रुट पैण। कागां करंग टंडोलिया सगला खाया मास ए दोए नैना मत छोहो फिर देखन की आस। श्लोक नंबर 92। कागा चूंड ना पिंजरा बसै ता उडर जा जित पिंजरे मेरा शव बसै मास ना तिद्दू खा। कागा चूंड ना पिंजरा बसै ता उडर जा। कागा हे कामा हे चस्के हे बुराइये चूंड ना ठूंग ना नोच ना मेरा पिंजरा ना ठूंगी जा मेरा मांस ना नोची जा। बसै ए लफ्ज फरीद जी ने अपना कॉइन कीता है। फरीद जी दा अपना आजाद कीता होया ए लफ्ज है। वस है तो बनया बसै। बसै दा अर्थ वसना नहीं लेना वसना ए अर्थ नहीं टुकेगा। बसै दा भाव है वस विच है। कागा बसै हे कामा जे तेरे वस विच है जेकर तेरी उडारी तेरे वस विच है जेकर तेरी अपनी उडारी ते तेरा इख्तियार है जेकर तू अपनी मर्जी नाल उड़ सकदा है ता उडर जा ता एथों उड़ जा मेरे शरीर तो उड़ जा मेरे शरीर तो दूर चला जा, मैनू ठूंगना छड़ के, मैनू नोचना छड़ के तू किते होर चलिया जा। कागा चूड़ ना पिंजरा बसा ता उडर जा। हे कावा मेरा सुक्का निर्बल शरीर नोचना छड़ दे, बसा जे तेरे वस विच है, जेकर तू ऐसा कर सकदा है ता उडर जा। मेरे निर्बल बेवस शरीर नू छड़ के परां चले आ जा। पाव है हे बुराइये, मैं ता सारी उम्र तेनू नहीं छड़ सकिया, जे तेरे इख्तियार कुछ है ता तू ही मैनू छड़ दे। बहुत चूंड चुकी है मैनू, बहुत नोच चुकी है मैनू, हुण तू ही मेरे ते तरस करके मैनू छड़ जा। जित पिंजरा मेरा शव वसै, मास ना तिद्दू खा। जित पिंजरा जिस शरीर विच मेरा शव वसै, पाव है मेरे शव दा प्यार वस रहा है, मेरे प्रीतम प्रभु जी दा प्यार वस रहा है। जिस शरीर विच प्रभु दा प्यार वस रहा है, मास ना तिद्दू खा। उस शरीर तो मांस खाना छड़ दे, भाव उस शरीर नो विषय भोगां वाल प्रेरणा छड़ दे। हे बुराइये, अपने शरीर विच प्रभु प्यार वसाण वाले नो तू अपने वल ना खिच। हे बुराइये, तू प्रभु प्यार वसाण वाले शरीर नो अपनी लाग ना ला। जित पिंजरे मेरा शव वसै, मास ना तिद्दू खा। हे बुराइये, तू मेरी खलासी कर, मेरे शरीर अंदर मैनू अपने प्रभु जी लई प्यार ता है, तू ही मैनू भोगां विच ला दिता सी जिस करके ए प्यार विसर गया सी। मेरे शरीर नू हुण तू विषय भोगां वल प्रेरण दा यतन ना कर। कागा चूंड ना पिंजरा बसै ता उडर जा। जित पिंजरे मेरा शव वसै, मास ना तिद्दू खा। श्लोक नंबर 93। फरीदा गौर निमाणी सड करे, निकरिया कारयाओ सर पर मैथे आवना, मरणो ना डरयाओ। फरीदा गौर निमाणी सड करे, निकरिया कारे आओ। फरीदा हे फरीद, गौर कबर, निमाणी बिचारी, सड करे सदा दे रही है, आवाजां मार रही है, आवाजां मार के की आख रही है। निकरिया कारे आओ, निकरिया हे बेकार जीव, कारे आओ घर विच आ, तू अपने घर विच आ जा। कबर सद्दा दे के आख रही है जीव नू, मैं तेरा घर हां, तू अपने घर विच आ वस। फरीदा गौर निमाणी सड करे, निकरिया कारे आओ। हे फरीद, विचारी निमाणी जही कबर बंदे नू वाजा मार रही है ते आख रही है, हे बेकर बंदिया, मैं जो तेरा घर हां, तू एथे मेरे विच आ जा। सर पर मैथे आवना, मरनो ना डरयाओ। अमूमन सरपर दा अर्थ हुंदा है जरूर, एथे सरपर दा अर्थ लवांगे अंत नू, आखिर। सरपर मैथे आवना, ओड़क नू तेरा आवना मेरे पास ही होना है। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਇਸਲਾਮੀ ਮਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਬੰਦੇ, ਆਖੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ ਜਾ, ਮਰਨੋ ਨਾ ਡਰਿਆ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਡਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮਰ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ ਜਾ ਔਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਘਬਰਾ ਨਾ। ਐ ਬੰਦੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਘਨੇੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਗੇ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਥੋਂ ਇੰਨਾ ਘਬਰਾ ਨਾ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਆ ਲੇਟੋ। ਆਖਿਰ ਫਰੀਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਲੇਟਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਨਿਮਾਣੀ, ਗੌਰ ਨਿਮਾਣੀ, ਤਾਂ ਨਿਮਾਣੀ ਗੌਰ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਿਮਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਨੰਬਰ ਦੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਭਾਵ ਮੌਤ ਕਦੇ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਲੇਟਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੌਤ ਨੂੰ ਓਪਰੀ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਓਪਰਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਨੈਸੈਸਰੀ ਐਂਡ। ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ, ਮਰਨੋ ਨਾ ਡਰਿਆਓ, ਮੌਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਡਰੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਇਸ ਲਈ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਢੇਪਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਦੁੱਖ ਮੇਟ ਕੇ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਸਰੀਰ ਚੋਲਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਚਾਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਫਰੀਦਾ ਗੌਰ ਨਿਮਾਣੀ ਸੱਡ ਕਰੇ, ਨਿਕਰਿਆ ਘਰ ਆਓ, ਸਰ ਪਰ ਮੈਥੇ ਆਵਣਾ, ਮਰਨੋ ਨਾ ਡਰਿਆਓ। ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 94। ਇੰਨੀ ਲੋਇਣੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਤੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਫਰੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਈ। ਇੰਨੀ ਲੋਇਣੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਤੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਲੋਇਣੀ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਕਿਹਤੀ ਕਿੰਨੀ ਖਲਕਤ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ, ਬੇਅੰਤ ਜੀਵ, ਚੱਲ ਗਈ, ਚਲੀ ਗਈ, ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਲੋਇਣੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਹਤੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਹੇ ਫਰੀਦ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਧ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਖਲਕਤ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਫਰੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੇ ਫਰੀਦ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪੋ ਤਾਪੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਲੋਹਣੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਗਈ ਫਰੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਈ। ਭਾਵ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਲੋਹਣੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਹਿਤੀ ਚੱਲ ਗਈ ਫਰੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਈ। ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 95। ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਮੈਂ ਮਿਲੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਢਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਖਲਕਤ ਸਾਡੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਬਚਨ ਦੁਹਰਾਵਾਂ। ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਮੈਂ ਮਿਲੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਇੰਜ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਮੈਂ ਮਿਲੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਮੈਂ ਮਿਲੈ, ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਵਾਰੇ। ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਲਵੇ ਤਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਮਿਲੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ, ਹੇ ਫਰੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਮੈਂ ਮਿਲੈ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਫਰੀਦ ਨੂੰ, ਹੇ ਫਰੀਦ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਸਵਾਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਪਾ ਲਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ ਔਰ ਹੇ ਫਰੀਦ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੁਖ ਪਾ ਲਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਪਾ ਲਵੇਗਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਹੇ ਫਰੀਦ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਗਤ ਤੇਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੇ ਫਰੀਦ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰ ਤੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੀ ਫਿਰੇਗੀ। ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰੇਗੀ। ਤੂੰ ਇਸ ਦਾ ਦਾਸ ਨਾ ਬਣ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਬਣਾ ਲੈ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਤੇ हे फरीद, जे तू मेरा दास होए के रहेगा तब संपूर्ण जगत तेरा दास हो जाएगा। आप सवार हैं, मैं मिले, मैं मिले आ सुख होए। फरीदा, जे तू मेरा होए रहें सब जग तेरा होए। श्लोक नंबर 96। कंधी उत्ते रुखड़ा किचरक बन्ने तीर, फरीदा कच्चा पांडा रखिया किचर ताई नीर। इस श्लोक विच फरीद जी शरीर दी अनस्थिरता दे दो सोहने टुकवे दृष्टांत पेश करदे ने। कंधी उत्ते रुखड़ा किचरक बन्ने तीर, फरीदा कच्चे भांडे रखिए किचर ताई नीर। कंधी कंढा, दरिया दा कंढा, रुखड़ा निका जिहा रुख, छोटा जिहा दरख्त, निका जिहा बिरछ, किचरक किन्ना कुचर, बन्ने बन्नेगा तीर धीरज तरवासा। कंधी उत्ते रुखड़ा किचरक बन्ने तीर, पाई दरिया दे कंडे ते उग्या होया दरख्त किन्नी कु देर तरवासा बन्नेगा। दरिया दे कंडे ते उग्या है बिरछ, कंडे ते पानी दी मार पैंदी रहिंदी है, कंडे दी मिट्टी खरदी रहिंदी है। जड़ां एक दिन नंगियां हो जानगियां, बिरछ डिग पाएगा। तो दरिया दे कंडे ते उग्या है दरख्त, ते इस दी मुनियाद बहुत ही लंबी नहीं हो सकती, कदे भी डिग सकदा है, कदे भी बाढ़ आ सकती है, हड़ आ सकता है। इसलिए दरिया किनारे रुखड़े दी मुनियाद कोई नहीं। एवें भाई मनुखा शरीर भी नदी किनारे रुखड़ा है, इसकी भी मुनियाद कोई नहीं। मौत सदा सिर ते मंडला रही है, ना जाने ए देही कदों टह पवे। कंधी उत्ते रुखड़ा किचरक बन्ने तीर, फरीदा कच्चा पांडा रखिए किचर ताई नीर। दूजा दृष्टांत, पांडा कच्चा होवे, कड़ा कच्चा होवे, कुम्यार ने जेकर इसनू पठे विच पकाया ना होवे, तद इस विच नीर, इस विच पानी बहुता चिर टिक नहीं सकता। पानी इस कच्चे पांडे विच बहुती देर ठहर नहीं सकता। मिट्टी दा कच्चा पांडा पानी नाल पोला होके टुट जाएगा। जिवें कच्चे पांडे विच पानी ज्यादा देर ठहर नहीं सकता, तिवें शरीर भी कच्चा पांडा है। इस कच्चे पांडे विच आत्मा ज्यादा देर रह नहीं सकती। शरीर रूपी कच्चा पांडा कदे भी टुट सकता है। तो भाई, जिवें नदी किनारे बिरछ दी कोई मुनियाद नहीं, कच्चे पांडे दी कोई मुनियाद नहीं, तिवें शरीर दी भी कोई मुनियाद नहीं। कंधी उत्ते रुखड़ा किचरक बन्ने तीर, फरीदा कच्चा पांडा रखिए किचर ताई नीर। श्लोक नंबर 97। फरीदा महल निसखण रह गए, वासा आया तल गोरां से निमाणियां, बैसन रूहां मल। आखी शेखा बंदगी, चलण अज के कल। फरीदा महल निसखण रह गए, वासा आया तल। फरीदा, हे फरीद, महल पक्के कर, निसखण बिल्कुल सखणे बिल्कुल खाली एकदम सुन्य है। तल लले नू सियारी तल विच हेठां धरती विच पाव कबर विच फरीदा महल सखण रह गए वासा आया तल। हे फरीद मौत आउण ते महल माड़ियां सुनियां पईयां रह जांदियां हन। वासा आया तल वासा डेरा तल तल विच हेठां धरती विच वासा आया तल। शरीर दा वासा धरती दे हेठ कबर विच हो जांदा है। पाव महलां विच वसण वाला शरीर हुण कबर दा वासी बनदा है। धरती हेठ कबर विच लिटा दिता जांदा है। गोरां से निमाणियां बहसन रूहां मल गोरां कबरां से ओ निमाणियां नीवियां जिन्हां तों नफरत करी दी सी। गोरां से निमाणियां उन्हां कबरां नूं जिन्हां नूं सदा नफरत कीती सी। बहसन रूहां मल उन्हां कबरां नूं रूहां मल के बह जाणगियां जदों तक डे ऑफ जजमेंट नहीं आउंदा। जिन्हां महल माड़ियां नाल मोह लाया सी उन्हां विच वसेबा तां बड़े थोड़े समें लई मिलिया पर जिन्हां कबरां नूं नीवियां निमाणियां जाणियां सी उन्हां विच लम्मा वसेबा शनाखत वाले दिन तक डे ऑफ जजमेंट तक। आखीं शेखा बंदगी चलण अज के कल। हे शेख फरीद इस करके तू बंदगी दा आखना कर पाव बंदगी करया कर खुदा दी इबादत करया कर क्योंकि अज या कल तेरा इस संसार तो चला जाना हो जाएगा। फरीदा महल निसखण रह गए वासा आया तल गोरां से निमाणियां बहसन रूहां मल आखीं शेखा बंदगी चलन अज के कल। श्लोक नंबर 98। फरीदा मौते दा बन्ना एवें दिसै ज्यों दरियावै ढाहा अगै दोजक तपिया सुनियै हूल पवै कहाहा। इकना नू सब सोझी आई इक फिरदे वे परवाहा अमल जे कीते आ दुनी स्यों से दरगह ओ गाहा। फरीदा मौते दा बन्ना एवें दिसै ज्यों दरियावै ढाहा। फरीदा हे फरीद मौते दा बन्ना मौत दा कंडा एवें दिसै इस तरह दा नजरी आउंदा है ज्यों जिवें दरियावै ढाहा दरिया दा कंडा जिसनू ढा लगी होवे। दरिया दा कंडा जो पानी दे वेग नाल ढह रहा होवे। फरीदा मौते दा बन्ना एवें दिसै ज्यों दरियावै ढाहा। हे फरीद जिवें हड़े हुए दरिया दा कंडा पानी दी मार नाल ढह रहा होवे। कंडा ढह ढह पानी विच डिग रहा होवे बस इसे तरह दा मैनू नजरी आ रहा है मौत दा कंडा। बेअंत जीव उमरा भोग भोग डिगदे जा रहे ने मौत विच। अगै दोजक तपिया सुनिए हूल पवै कहाहा। अगै मौत दे उरले बन्ने तां है साडा संसार ते मौत दे पार है जिसनू फरीद जी ने अगै आख्या है। मौत दे पार दा इस अगै दा असी कुछ देखिया नहीं उस बारे ता सिर्फ सुनिया ही है। तो आखदे ने फरीद जी अगै दोजक तपिया सुनिए ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋਜ਼ਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਰਕ ਤਪਿਆ ਸੁਣੀਏ ਤਪ ਰਿਹਾ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੋਜ਼ਕ ਤਪਿਆ ਸੁਣੀਏ ਇਉਂ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਲਈ ਨਰਕ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੂਲ ਪਵੈ ਕਹਾਹਾ ਹੂਲ ਰੌਲਾ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਕਹਾਹਾ ਹਾਹਾਕਾਰ ਉੱਥੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ ਹੂਲ ਪਵੈ ਕਹਾਹਾ ਇੱਕ ਨਾ ਨੂੰ ਸਭ ਸੋਝੀ ਆਈ ਇੱਕ ਫਿਰਦੇ ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਲ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਵੱਲ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਇੱਕ ਫਿਰਦੇ ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਕਈ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੌਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਖਿਆਲ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜੋ ਹੋਏਗੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਅਜੇ ਮੌਜ ਲੁੱਟੋ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨਾ ਨੂੰ ਸਭ ਸੋਝੀ ਆਈ ਇੱਕ ਫਿਰਦੇ ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤਿਆ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਸੇ ਦਰਗਹਿ ਉਹ ਗਾਹ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤਿਆ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਿਆਂ ਜੋ ਅਮਲ ਕਰੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰੀਦੇ ਹਨ ਸੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਅਮਲ ਹੀ ਉਹ ਗਾਹ ਗਵਾਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਹੀ ਗਵਾਹ ਬਣਦੇ ਹਨ ਸੇ ਦਰਗੇ ਉਹ ਗਾਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਹੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਅਮਲ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਮਲ ਮਾੜੇ ਸਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਸਿਰ ਨਿਵੇੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਲ ਉਸ ਦਰਗਾਹੇ ਸਭ ਉਗੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕੁਛ ਉਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਤਮਾ ਨਗਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰੀਦਾ ਮੌਤੇ ਦਾ ਬੰਨਾ ਇਵੇਂ ਦਿਸੈ ਜਿਉਂ ਦਰਿਆਵੈ ਢਾਹਾ ਅੱਗੇ ਦੋਜ਼ਕ ਤਪਿਆ ਸੁਣੀਐ ਹੂਲ ਪਵੈ ਕਹਾਹਾ ਇੱਕ ਨਾ ਨੂੰ ਸਭ ਸੋਝੀ ਆਈ ਇੱਕ ਫਿਰਦੇ ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤਿਆ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਸੇ ਦਰਗੈ ਉਹ ਗਾਹਾ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 99 ਫਰੀਦਾ ਦਰਿਆਵੈ ਕੰਨੈ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ ਕੇਲ ਕਰੇਂਦੇ ਹੰਝਨੋ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪਏ ਤਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੇਲਾਂ ਵਿਸਰੀਆਂ ਜੋ ਮਨ ਚਿਤ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ ਸੋ ਗਾਲੀ ਰੱਬ ਕੀਆਂ ਫਰੀਦਾ ਦਰਿਆਵੈ ਕੰਨੈ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ ਦਰਿਆਵੈ ਕੰਨੈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬਗਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸਰ ਬਗਲੇ ਦੇ ਅਰਥ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਉਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਹੰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਤ ਭਗਤ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹਨ ਬਗਲਾ ਹੰਸ ਵਰਗਾ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਪਰ ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਖਾਵਾ ਭਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰਾ ਕਪਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ तो आम संसारी बंदा जो प्रभु दे प्रेम विच नहीं वो बगला ही है, खेल करे खेल रहा है, कलोल कर रहा है, आनंद उलास विच है, मौज विच है। फरीदा दरिया वे कन्ने बगला बैठा केल करे। हे फरीद, जिवे दरिया दे कंडे ते बैठा होया बगला कलोल कर रहा है, तिवे ही ए बंदा जगत दे रंग तमाशियां विच मस्त है। केल करेंदे हंजनो अचिंते बाज पए, हंज हंस वर्गा चिट्टा बगला, हंस वर्गा चिट्टा पर है बगला। अचिंते अचनचेत, केल करेंदे हंजनो अचिंते बाज पए, जिवें उस बगले नू अचानक बाज आ पेंदे हन, जिवें खेड विच मस्त बगले नू अचानक बाज दे पंजे आज कटदे हन, तिवें भाई भोग विलास करदे बंदे नू भी अचानक जमदूत आ फड़दे हन। बाज पए तिस रब दे केलां विसरियां, जमदूत रब दे छड़े होए बाज हन। जदों बाज आ घेरदे ने बगले नू, तद फिर बगले नू कलोल भुल जांदे ने, जान दी पै जांदी है। तिवें भाई एहो हाल हुंदा है बंदे दा जदों उसनू जमदूत आ घेरदे ने, पल भर विच सब मौज मेला विसर जांदा है। जो मन चित ना चेते सन सो गाली रब कीआं, मन मन विच नन्ने नू सियारी है, मन विच चित चित विच भी तत्ते नू सियारी है, चित विच जो मन चित न चेते सन सो गाली रब कीआं। जो गल्लां मनुख दे कदे चित चेते विच नहीं सन ओ रब ने कर दितियां, ओ रब ने कर विखाइयां। पाव ए कलोल कर दे जीव नू मौत तां याद ही नहीं सी, चित चेते नहीं सी, कदे ख्याल विच ही नहीं सी कि मौत वर्गी घटना मेरे ते भी वापर सकदी है। मनुख अंदर खाने एवें मनी बैठा है कि मौत दूसरियां लई है, दूजे मरदे ने। मन बंदे दा कबूल ही नहीं करदा कि मैं कदे भी समाप्त हो सकदा हां, मन बंदे दा कबूल नहीं करदा कि किसे कड़ी भी ए घटना मेरे ते भी वापर सकदी है, क्योंकि मेरा नियत समा केड़ा है इसका मैनू ज्ञान नहीं। कई बार ए अचानक चपटा मारदी है, चट ही ना जाने कित्थों कारण ते बहाने बन जांदे ने, कोई उपा कम नहीं करदा। बस दफा तां दवाई दारू करन दा सेवा करन कराउन दा मौका भी नहीं रहिंदा। भैन भाई धी पुत्र साख संबंधी दोस्त मित्र सब तक दे हथ मलदे ही रह जांदे हन। फरीदा दरिया वै कन्ने बगला बैठा केल करे, केल करेंदे हंजनो अचिंते बाज पए, बाज पए तिस रब दे केलां विसरियां, जो मन चित न चेते सन सो गाली रब कीआं। श्लोक नंबर 100। साढ़े त्रैमण देहरी चलै पानी अन्न, आयो बंदा दुनी विच वत आसुनी बन। मलकल माउत जा आवसी सब दरवाजे पन, तिन्ना प्यारियां पाइयां अगे दिता बन। वेखो बंदा चलिया चौं जणियां दे कन। फरीदा अमल जे कीते दुनी विच दरगह आए कम। साढ़े त्रैमण देहरी चलै पानी अन्न, देहरी सोनी दे सोनी पली होई दे। साढ़े त्रैमण देहरी मनुख दा सोना पलिया होया शरीर साढ़े त्रैमण तक पहुंच जांदा है। इस तो भी भारी हो सकता है, चलै तुरदा है, चलै पानी अन्न, अन्न पानी दे सिर कम कर रहा है। साढ़े त्रैमण देहरी चलै पानी अन्न, मनुख दा ए साढ़े त्रैमण दा पलिया होया शरीर अन्न पानी दे जोर ते कम कर रहा है। आयो बंदा दुनी विच वत असूनी बन, वत मुड़ के परत के मर के मुड़ संसार विच आया है। असूनी कोई सूनी जही आस, बन नन्ने नू सियारी बन के। आयो बंदा दुनी विच वत असूनी बन, बंदा जगत विच फिर आया है, कोई सूनी जही आस बन के आया है। ख्याल रखना आसां दा ही बजा मनुख दोबारा जन्म लैंदा है, अधूरिया आसां ही इसनू मुड़ जन्म दिवांदियां हन। आयो बंदा दुनी विच वत असूनी बन, बंदा जगत विच फिर आया है कोई सोहनी जही आस बन के। मलकल मौत जा आवसी सब दरवाजे बन, ओ सोहनी आस ता अजे पूरी भी नहीं होई हुंदी जदो मौत दा फरिश्ता शरीर किले दे सारे दरवाजे बन के अंदर आवड़दा है। भाव है सारे ज्ञान इंद्रे नकारे करके अंदर आ जांदा है। तिना प्यारियां पाहियां अगे दिता बन, बंदे दे प्यारियां भरावां दी कोई पेश नहीं चलदी। ओ बंदे नू मौत दे फरिश्ते अगे बन के तोर देंदे हन। वेखो बंदा चलिया चहु जणियां दे कन, कन कंधियां ते मोढ़ियां ते। वेखो बंदा चलिया चाहूं जनियां दे कन, देखो भाई बंदा चार जनियां दे मोढ़ियां ते हुण जीवन सफर मुका के तुर पिया है। फरीदा अमल जे कीते दुनी विच दरगह आए कम, हे फरीद दुनिया विच रह के जो नेक और भले कम कीते हुंदे हन ओ दरगाह विच रूह दे सहाई हो आउंदे हन। साढ़े त्रैमण देहरी चलै पानी अन्न, आयो बंदा दुनी विच वत असूनी बन, मलकल मौत जा आवसी सब दरवाजे पन, तिना प्यारियां पाहियां अगे दिता बन। वेखो बंदा चलिया चौ जणियां दे कन, फरीदा अमल जे कीते दुनी विच दरगह आए कम। श्लोक नंबर 101। फरीदा हाँ बलिहारी तिन पंखियां, जंगल जिन्ना वास कंकर चुगन थल वसन रब ना छोड़न पास। फरीदा हाँ बलिहारी तिन पंखियां, जंगल जिन्ना वास हाँ मैं बलिहारी सदके कुर्बान, हाँ बलिहारी मैं सदके हाँ मैं कुर्बान हाँ। तिना पंखियां उना पंछियां तो जंगल लल्ले नु सियारी जंगल विच, जिन्ना वास जिन्ना दा वसेबा है। फरीदा हाँ बलिहारी तिना पंखियां, जंगल जिन्ना वास मैं उन्ना पंछियां तो सदके हाँ जिन्ना दा वासा जंगल विच है। कंकर चुगन थल वसन रब ना छोड़न पास। कंकर चुगन कंकर रोड थल जमीन पास पासा आसरा। कंकर चुगन थल वसन रब ना छोड़न पास। रब ना छोड़न पास रब दा आसरा नहीं छड़ दे। कंकर चुगन थल वसन रब ना छोड़न पास रहिंदे बेशक जंगल विच हन। रोड चुके गुजारा करदे हन जमीन ते वसदे हन पर रब दा आसरा नहीं छड़ दे। एता सन अखरी अर्थ। आओ जरा कु समझिए फरीद जी श्लोक द्वारा की संदेश दे रहे हैं। जंगल विच वसदे पंछी किन्हां नूं आख्या है? ए हन संत जन भगत जन जो वणा विच निवास करदे हन। आखदे ने फरीद जी इन्हां संत पंछियां तों मैं बलिहारने हां। रहिंदे जंगलां विच हन पुंजे ही निवास करदे हन पाव जमीन ते ही उठदे बैठदे सौंदे हन। कंद मूल रूपी चोगा चुगदे हन। इन्नी सादगी वाला जीवन फिर भी परमेश्वर दा आसरा कदे नहीं छड़दे। पाव सदा सिमरन बंदगी विच रहिंदे हन। फरीदा हौं बलिहारी तिन पंखियां जंगल जिन्ना वास कंकर चुगन थल वसन रब ना छोड़न पास। श्लोक नंबर 102। फरीदा रुत फिरी वन कंबिया पत चढ़े चढ़ पाहे चारे कुंडा टूंडियां रहन के थाऊ नाहे। फरीदा रुत फिरी वन कंबिया पत चढ़े चढ़ पाहे। फिरी बदली रुत फिरी रुत बदली। बसंत गई बहार गुजर गई पत चढ़ने डेरा आ लाया। रुत फिरी वन कंबिया जंगल कंबिया सारा जंगल हिल गया। जंगल दा बूटा बूटा हिल गया। पत चढ़े रुखां बिरखां दे पत्ते चढ़े कुल वनस्पति दे पत्ते चढ़े। चढ़े चढ़ पाहे चढ़ चढ़ थले डिग पए। फरीदा रुत फिरी वन कंबिया पत चढ़े चढ़ पाहे। हे फरीद रुत बदली अते रुत दे बदलदिया जंगल दा बूटा बूटा हिल गया। बनस्पति दे पत्ते चढ़ चढ़ के जमीन ते गिर रहे ने। चारे कुंडा टूंडिया रहन के थाऊ नाहे। कुंडा कोने टूंडिया टूंड वेखिया ने। रहन टिका स्थिरता किथाऊ किसे जगह। रहन किथाऊ नाहे टिका स्थिरता किते भी नहीं है। चारे कुंडा टूंडिया रहन के थाऊ नाहे। जगत दे चारे कोने मैं ढूंढ वेखे ने स्थिरता टिका कंटिन्यूटी किते भी नहीं है। जगत विच किते भी स्थिरता नहीं है। कोई चीज सदा उवें नहीं रहिंदी। जिवें रुत बदलदियां पत झड़ आउंदी है। पत्ते कमजोर पै के हवा नाल दरख्तां तों झड़ जांदे ने रुख सखणे हो जांदे हन। तिवें ही भाई जोबन अवस्था रूपी रुत फिरदियां बिरद अवस्था जदों प्राप्त हुंदी है तदों शरीर वण भी कंबदा है। दंद रूपी पत्ते ਬਾਲਾਂ ਰੂਪੀ ਪੱਤੇ ਝੜਦੇ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਇੰਦਰੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਕੇ ਨਿਕੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਜਗਤ ਦੇ ਚਾਰੇ ਓਰ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਪੱਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਝੜਦੇ ਹਨ, ਰੁੱਤ ਫਿਰਦਿਆਂ ਜਵਾਨੀ ਮਿਟਦਿਆਂ ਬੁਢੇਪਾ ਉਤਰਦਿਆਂ ਸਭ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਰੀਦ ਦਾ ਰੁੱਤ ਫਿਰੀ ਵਣ ਕੰਬਿਆ, ਪੱਤ ਝੜੇ ਝੜ ਪਾਹੇ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਟੂੰਡੀਆਂ, ਰਹਿਣ ਕੇ ਥਾਉਂ ਨਾਹੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 103। ਫਰੀਦਾ ਪਾੜ ਪਟੋਲਾ ਧੱਜ ਕਰੀ, ਕੰਬਲੜੀ ਪਹਿਰਿਓ ਜਿੰਨੀ ਵੇਸੀ ਸ਼ੋਹ ਮਿਲੈ ਸਹੀ ਵੇਸ ਕਰਿਓ। ਫਰੀਦਾ ਪਾੜ ਪਟੋਲਾ ਧੱਜ ਕਰੀ, ਕੰਬਲੜੀ ਪਹਿਰਿਓ। ਫਰੀਦਾ, ਹੇ ਫਰੀਦ, ਪਟੋਲਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਾ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਲਿਬਾਸ, ਪਾੜ ਪਟੋਲਾ, ਪਾੜ ਵਿੱਚ ਅੜਾੜੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਪਾੜ ਪਟੋਲਾ, ਪਟੋਲਾ ਪਾੜ ਕੇ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ, ਤਜ ਲੀਰਾਂ ਤਜ ਕਰੀ, ਲੀਰਾਂ ਲੀਰਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਫਰੀਦਾ ਪਾੜ ਪਟੋਲਾ ਧੱਜ ਕਰੀ, ਹੇ ਫਰੀਦ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਲੀਰਾਂ ਲੀਰਾਂ ਕਰ ਸੁੱਟਾਂ। ਹੁਣ ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸ਼ੁਦਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀਰਾਂ ਲੀਰਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਮਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਕੰਬਲੜੀ ਪਹਿਰਿਓ, ਕੰਬਲੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਕੰਬਲੀ ਜਿਹੀ ਕਿ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਓੜਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਬਲੜੀ ਪਹਿਰਿਓ, ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਬਲੀ ਹੀ ਓੜ ਲਵਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਵੇਸੀ ਸ਼ੋਹ ਮਿਲੈ ਸਹੀ ਵੇਸ ਕਰਿਓ। ਵੇਸ ਲਿਬਾਸ, ਜਿੰਨੀ ਵੇਸੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿਬਾਸ ਨਾਲ, ਸ਼ੋ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਖਸਮ, ਜਿੰਨੀ ਵੇਸੀ ਸ਼ੋ ਮਿਲੈ ਸਹੀ ਵੇਸ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿਬਾਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਵੇਸ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲਿਬਾਸ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਵੇਸੀ ਸ਼ੋ ਮਿਲੈ ਸਹੀ ਵੇਸ ਕਰਿਓ। ਭਾਈ, ਪਤੀਵ੍ਰਤਾ ਔਰਤ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਉਸਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਮੰਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜੋ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਪਾਵਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੀ ਇਹੋ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਕੀਰੀ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਰੀਝਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਲਾਹ ਸੁੱਟਾਂ, ਫਕੀਰੀ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਲਵਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਖਸਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਲਾ ਦਿਆਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਤੇਹਾ ਵੇਸ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਚੰਗਾ, ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਏ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇ ਉਹੀ ਕਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਲੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਜੇ ਫਕੀਰੀ ਲਿਬਾਸ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਹੇ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮਿਲ ਪਵੇਂ। ਫਰੀਦਾ ਪਾੜ ਪਟੋਲਾ ਤਜ ਕਰੀ, ਕੰਬਲੜੀ ਪਹਿਰਿਓ ਜਿੰਨੀ ਵੇਸੀ ਸ਼ੋ ਮਿਲੈ ਸਹੀ ਵੇਸ ਕਰਿਓ। श्लोक नंबर 104 महला तीजा। काये पटोला पाड़ती कंबलड़ी पहरे, नानक कर ही बैठिया शव मिले जे नियत रास करे। महला तीजा। ए श्लोक जिमें के सिरलेख महला तीजा दसदा है, श्री गुरु अमरदास जी महाराज दा है। जदों बाबा फरीद जी दी बाणी गुरु अमरदास जी को गुरु गद्दी दे विरसे नाल आई, तदों गुरु अमरदास जी ने अपना ए श्लोक नाल जोड़िया। क्यों? कोई ए भुलेखा ना खा लवे कि फरीद जी फकीरी पहरावे दी हिदायत कर रहे ने। कोई भुलक्कड़ मता समझ लवे कि फरीद जी दा कहना है कि प्रभु प्राप्ति लई फकीर हो जाना जरूरी है। इसलिए श्री गुरु अमरदास जी ने यह श्लोक अपने कोलों लिखिया है। की फरमांदे ने आप जी? काए पटोला पाड़ती कंबलड़ी पहरे, नानक कर ही बैठिया शव मिलै जे नियत रास करे। काए पटोला पाड़ती कंबलड़ी पहरे, हे फरीद रेशमी कपड़ा तू क्यों पाड़े? रेशमी कपड़े पाड़ के कंबली ओढ़ण दा की लाभ? रेशमी कपड़िया ने तेरा की बगाड़िया है? वेश बदलन नाल की हो जाएगा? वेश बदलन नाल कुछ बदल जान वाला नहीं। आओ इस गल नूं जरा विस्थार सहित समझावा। रेशमी कपड़े थोड़ा ही तुहानू रोक रखदे ने प्रभु प्राप्ति दे राह विच। तुहाडा लोभ है जो असली रुकावट है। रेशमी कपड़े त्याग देण नाल की हो जाएगा जेकर लोभ ओवे ही कायम अंदर है? कामनी त्याग देवीए अंदरों काम दा थोड़ो त्याग हो जांदा है। सोना चांदी दे सिक्के महल माड़ियां रेशमी लिबास कामनी ए सब कुछ कोई रुकावट नहीं है। रुकावट दा तुहाडे मन अंदर है। तुहाडे मन दी दशा एहो रुकावट है। तुहाडे मन दी हालत एहो रुकावट है। कुट के फड़ी रखण दी इच्छा एहो रुकावट है। जदों तक अंदर कुट के फड़ी रखण दी इच्छा कायम है उदों तक त्याग बेमानी है। तुसी जेकर एक चीज छड़ोगे दूजी फड़ लोगे। तन तुसी जे छड़ भी देवो पकड़ किसे होर चीज दी हो जावेगी। इस तरह भी हो सकता है कि तुसी तन छड़ दियो, महल छड़ दियो, रेशमी कपड़े भी छड़ दियो अते लंगोटी दी पकड़ कर लवो। सब कुछ छड़ के कई बार लंगोटी छड़नी औखी हो जाती है। कहानी है राजा जनक दी। ग्रस्त उदासी दी निर्लेपता दी मिसाल देनी होवे ता राजा जनक दी देई दी है। एक सन्यासी राजा जनक दे घर मेहमान बन के ठहरिया अते उसने सारा ऐशो इशरत दा समान उत्थे देखिया। कहन लगा कि मैं तां सुनिया सी तुसी परम ज्ञानी हो। ए भोग विलास दौलत शबाब एक किधरला ज्ञान है? जनक ने कहा वक्त आउण ते अर्ज करांगा, क्योंकि हर गल दा कोई खास समा हुंदा है। बेमौका कुछ भी अर्ज कीता जावे तां ब्यर्थ हुंदा है। समय उते बीज पाउणा चाहिदा है। ज्ञानी भी जानदा है कि बीज समय उते बीजा ही फल देंदा है। इसलिए थोड़ी जही उड़ीक कर। दूसरे ही दिन टुकवा समा आ गया। आ कद आ गया राजा जनक ने लै आंदा। स्थिति तैयार कर दी थी, संजोगों में बना ले, सरकमस्टांसेस तैयार कर ले। सन्यासी नू महल दे पिछवाड़े वगदी नदी विच इशनान कराउण लई लै गए। जदों दोवें नहा रहे सन तां महल नू अग लग गई। दरअसल अग लगवा दित्ती गई सी, ओ इसलई कि सन्यासी बहुत काहली विच सी महल तों भज जाण लई। डरदा सी कि किते भोग विलास वाले महल विच फसके ही ना रह जाए, सो जल्दी करनी जरूरी सी। सन्यासी चीख उठिया, देखो तुहाडे महल नू अग लग गई है। जनक ने कहा कि अपना की पराया, खाली हाथ आए सी, खाली हाथ ही चले जाना है। किदा महल, लगन दियो अग, फिक्र ना करो, मजे नाल इशनान करो। पर ए सुन लई सन्यासी उथे ना रुकिया, ओ लंगोटी महल दे कोल छड़ा आया सी, वाहो दाही भजया। आखे महल ता ठीक है, जल रहा है, पर मेरी लंगोटी भी महल दी कंध नाल ही पई है। महल ते लंगोटी विच इस तरह कोई फर्क नहीं रह जांदा जे लोभ ना जावे। तुहाडे लोभ दा सहारा कुछ भी बन सकदा है, पट दे कपड़े भी ते फकीर दी कंबली भी। लोभ तो पट पैदा हुंदा है, ना के पट तो लोभ। महल माड़ियां त्याग देन नाल, धन दे अंबार त्याग देन नाल, पट दे कपड़े त्याग देन नाल लोभ नहीं मरदा। जदों तक तुसी जागदे नहीं, ए नहीं देख सकदे कि सवाल ना पट दा है ते ना कंबली दा है, सवाल ता अंदर लोभ दा है। तो फिर हे फरीद, काए पटोला पाड़ती, कंबलड़ी पहरे, नानक कर ही बैठिया शौ मिले जे नीहत रास करे। तकरीबन 239 वर्यां विच 10 जामे धारण करके गुरु नानक दे घर ने जगत नू ए जुगत समझाई। नानक सतगुरु भेटी है, पूरी होवे जुगत। ओ जुगत की है? नंबर एक, ओ है गुरु दे उपदेश नू सर्वन करना। नंबर दो, मनन करना। नंबर तीन, निध्यासन करना, यानी के कमाउना। अते अखीर नू नंबर चार, साख्यात करना, प्रभु जी नू साख्यात करना, प्रभु जी नू अपने अंदर प्रगट करना। ए चार स्टेजे सानू गुरबत ने बख्शिश कीतियां हन, महापुरशा ने दसियां हन, अते आप धारनी होके साडे गुरमुखां ने ए सानू समझाईयां हन। ग्रस्त कमाउंदियां गुरसिख दी जीवन जुगत ऐसी होवे, सर्वन, मनन, निध्यासन, साख्यातकार। सुनिया मनिया, मन कीता पाओ, फिर की है अंतरगति तीरथ मलनाव। इस तरह नाल मनुख दे मन दी आलूदगी दूर हुंदी है। नानक सतगुरु भेटिया, पूरी होवे जुगत। बस फिर की है, हसंदियां खिलंदियां पहनंदियां खावंदियां विचै होवै मुक्त। साधारण तकड़ी नाल शक पाएगा कि हसंदियां खिलंदियां पहनंदियां खावंदियां मुक्त हो सकीदा है। अजेहे शक दा शिकार होके गुजरात दे किशोरे जहे फाक फकीर ने, जिसका नां सी सैयद शाह दौला अते नाल इस देसी इब्राहिम, शाहनशाह श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज दे घोड़े दी वाग फड़ के कह बैठे सन, एक किस किस्म दी दरवेशी है, तेनू तो पता नहीं कि फकीरी आखदे किस नू ने। सवाल भी कीता फारसी विच, फकीरी चीस्त? गुरदेव कीमती लिबास पहन के, दो तलवारां सजा के, ਵੱਡ ਮੁੱਲੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜੀਨ ਅਤੇ ਕਾਠੀ ਉੱਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਸਨ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਅਣਰਾਏ ਜੀ, ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ, ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬੱਚੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ, ਇਉਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਚਾਲੀਸੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਫਕੀਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਫਕੀਰੀ ਚੇਸਤ, ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਉਂ ਕਮਲ ਰਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਉੱਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ, ਮੁਰਗਾਈ ਨੈ ਸਾਣੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੱਯਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿਆਗ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਫਕੀਰੀ ਚੇਸਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ? ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਫਕੀਰੀ ਚੇਸਤ, ਕੀ ਹੈ ਫਕੀਰੀ? ਹਜ਼ੂਰ ਬੋਲੇ, ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ? ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਹਨ, ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਹੈ, ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਐਡਾ ਸ਼ਾਹੀ ਜਲਾਲ, ਤੇ ਹਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰ ਹੋ, ਮਜ਼ਾਕ ਪਏ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਕੀਰੀ ਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਬਤਦਾਏ ਫਕੀਰੀ ਫਨਾਸਤ, ਬਾ ਇੰਤਹਾਏ ਫਕੀਰੀ ਬਕਾਸਤ। ਭਾਵ ਇਸਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਪ ਗਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਫਕੀਰੀ, ਤਾਂ ਸ਼ੌ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਅਮਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਆਪ ਗਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੌ ਪਾਈ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਅਮਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰੀ ਠਾਠ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਕੀਰੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਚੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੰਬਲੀ ਥੱਲੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਪਕੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਲੇਮੀ ਵਸਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੀਮਤੀ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ, ਹਲੇਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਕੀਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਬਤਦਾਏ ਫਕੀਰੀ ਫਨਾਸਤ, ਬਾ ਇੰਤਹਾਏ ਫਕੀਰੀ ਬਕਾਸਤ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਜ ਯੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹੋ ਸਹੀ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਤੋ ਭਾਈ ਗ੍ਰਸਤ ਛੱਡ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਟੋਲਾ ਪਾੜ ਕੇ ਕੰਬਲੀ ਓੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਟੋਲੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੀਦੇ ਨੇ। ਕਾਏ ਪਟੋਲਾ ਪਾੜਤੀ ਕੰਬਲੜੀ ਪਹਿਰੇ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਿਆਂ ਸ਼ਹੁ ਮਿਲੈ ਜੇ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰੇ। ਹੇ ਫਰੀਦ, ਗ੍ਰਸਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਫਕੀਰੀ ਵੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਗ੍ਰਸਤ ਪਾਲਦਿਆਂ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰ ਲਵੇ, ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਕਾਹੇ ਪਟੋਲਾ ਪਾੜਤੀ ਕੰਬਲੜੀ ਪਹਿਰੇ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਿਆਂ ਸ਼ਹੁ ਮਿਲੈ ਜੇ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰੇ।